Market Monster. Good evening and welcome to the Friday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंच के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में हम देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर, बात करेंगे सेंसेक्स और निफ्टी की, और खबरों की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपलब्ध हैं स्टूडियोज में पुनीत जैन, जो मार्केट एक्सपर्ट हैं। पुनीत, बहुत बहुत स्वागत मार्केट मंत्र में आपका।
धन्यवाद हर्ष।
शुरू करते हैं मार्केट मंत्र, सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में।
Sensex and Nifty soared above 1.5% today. Sensex closes at 80,437 points. Nifty finishes at 24,541. IPO season warms up. 25 companies worth more than 22,000 crore rupees gearing up for market entry. And National Coal Index provisional data reveals sufficient coal availability to meet growing demands.
Sensex Nifty mein 1.5% se bhi adhik ki badhat. सेंसेक्स 80,437 तो निफ्टी 24,541 पर रहा। 25 कंपनियां 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का आईपीओ लाने को तैयार, सेबी ने दी मंजूरी। और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के आंकड़े बाजार में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजारों में आज सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन जबरदस्त उछाल रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,331 अंक बढ़कर 80,000 से ऊपर पहुंचा, 80,437 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 397 अंक चढ़कर 24,541 पर बंद हुआ। एनएसई में लिस्टेड 95 कंपनियों के शेयरों ने आज 52 हफ्ते की ऊंचाई देखी, जबकि 31 कंपनियों के शेयर पिछले एक साल की गिरावट पर बंद हुए। और सेंसेक्स पैक की 30 कंपनियों के लिए आज सबसे अच्छा दिन कहा जा सकता है, क्योंकि 29 कंपनियों के शेयर तेजी पर बंद हुए, जबकि सिर्फ एक कंपनी सन फार्मा शायद, उसके शेयर जो हैं लगभग सपाट रहे, बहुत मामूली गिरावट रही।
Domestic benchmark indices, Sensex and Nifty traded firm and ended the week's last session more than 1.5% up today. At closing bell, BSE Sensex zoomed 1,331 points or 1.68% up to close at 80,437. NSE Nifty advanced 397 points or 1.65% to close at 24,541. In the National Stock Exchange, 95 companies hit their 52-week high, 31 hit their 52-week low. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap and the small-cap indices rose nearly 2%. In the Sensex pack of 30 companies, except Sun Pharma, which ended flat with a slim loss, 29 companies registered gains. The top gainers today were Tech Mahindra, which rose by more than 4%, Tata Motors and Mahindra & Mahindra was up by nearly 3.5%, and TCS was up by 3%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all 20 sectors logged gains. The top gainers were information technology, which was up by 3%, tech and utility up by 2%, and services and auto nearly 2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive. Out of 4,036 companies, shares of 2,462 companies advanced, 1,467 companies declined, and 107 companies remained unchanged. Let's have a look at how the rupee performed today.
Rupiah dollar ke mukable aaj sapat raha Arjun, aur 1 dollar ki keemat 83 rupaye 94 paise rahi hai.
So Puneet, what's your opinion about today's market performance? Up by 1331 points, 1.68% you have the mid cap and the small cap indices up by 2%. That's fairly high for indices which are already at an all-time high. What were the real reasons?
So, Arjun, you're right. Today's market again shows the resilience in the Indian stock markets. Last couple of weeks have been somewhat mixed for Indian markets. We saw there was some retreat, some softness in large caps, and particularly Bank Nifty stocks. Today, what we saw was a very strong rebound. Of course, followed by we saw the mid caps and small caps also rose very sharply. So clearly, and we are once again closer to the all time high, which was about 25,000 level index. So clearly, I think the markets are showing tremendous resilience in India. There are many reasons why the markets are very hopeful of strength going forward. One of the most important factors, I would say, is the strong economic performance. Our GDP continues to grow quite strongly. We recently had a corporate earnings season where companies came out with pretty good results. On an average, there was about 15-16% growth in top line, which again reinforces the belief that the Indian economy is doing very well. And on top of it, last week, we got data which showed that the inflation had come down below critical levels, and in fact, below that 4% benchmark which RBI had set. So, which again raised hopes for some kind of rate cuts and a further boost to the economic growth. So, all these factors, I think, are combining, plus very strong liquidity by retail investors in India. I think all these factors combined to once again set up this huge jump in indices today.
You talked about resilience, DIIs for the net buyers today in the equity market to the tune of 2,607 crore rupees. FIIs were also net buyers to the tune of 767 crore rupees. What is the value that they're seeing in companies right now? You spoke about quarterly results, but usually when you are into bulk buying, are you looking at what's going to happen in the future? What are we looking at? Earlier there was a margin focus with companies. Now there is a focus away from margin to sales volume. We're seeing that with auto companies right now. Today auto stocks did very well. The index went up by 2% for the auto Nifty. So what is the shift in the approach of the corporate sector, which is obviously benefiting from the economic policy of the government? But what is the mindset of the hedge funds when they're looking at the market right now, including the DIIs?
So, interestingly, the question that you raise, I mean, what do foreign investors or investors look at when they're investing in a particular market? Let's say at this time, point of time, they're investing in India. So, they not only look at the fundamentals of that particular economy, which is in India in this case, they also look at fundamentals of other economies where they could possibly invest. So, it's not just that we are doing very well in India because of Indian factors. The truth is that like somebody said, India is the last standing bull market in the world. And practically, if you look at the markets in Asia, they're very soft. China has not been going anywhere. Even Japanese stock market had a huge fall recently. European markets have been underperforming for quite some time. The US markets were doing well, but they had a sharp fall in the last couple of weeks. So clearly, if you look at Indian stock market, which is now the world's third largest market by volumes, that was the only market which was outperforming other global peers. And therefore, I think global investors have very little choice but to come and invest some part of their investable surplus of money into the Indian markets. So that's one, I think. By comparison, Indian markets appear to be very well placed when we compare it with the other large markets. That's one, I think, area of strength that we have. Of course, combined with this is the economic growth that we have in India. If we are looking at 7% plus growth in GDP in the current year, I think that's very attractive for foreign investors as well as Indian investors. And in fact, this rally in markets has been driven more by domestic investors having confidence in Indian companies rather than foreign investors. If you look at data last couple of weeks, FIIs were actually selling in the Indian market. And we had the domestic institutions buying and that outstripped selling by foreigners. So clearly, I think it's more driven by domestic factors, liquidity, which is available with our investors here, and of course in comparison with the other global markets.
Is the consumption story still strong in India? Is that what the macroeconomics, the hedge funds are looking at, which will drive corporate performance like in the US? Because there seems to be a similar trend. The US stock market is also very bullish. The Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, they haven't lost a step, even though we've seen some drop in valuation of NASDAQ companies like NVIDIA, but they have again bounced back. So what's the Why is there a similar trend in both the markets?
So both markets, if you see US and India, they're driven by consumption story right now. In the US economy is also being driven by strong consumer spends. And similarly in India, if you see, the domestic consumption is very strong. Therefore, the GDP growth of 7.5% in India. So clearly, I think these are two. And we had other comparable stories like China. But China has fallen behind pretty badly. Even Japan has not been doing too well. Europe also, we have seen some fall in consumption. So I think on that count alone, India and USA are really in step with each other. And therefore, we are attracting the largest amount of capital also.
So today has been a story of a bull market with all 20 sectors logging gain, including IT. But really, auto stocks have really seen a very high valuation. What's the real reason behind that? What is a valuation that investors are looking at?
So, Arjun, clearly in India, we have seen auto stocks being the favorite for investors.
Even though the inventory levels have gone up by 12.4% for this month.
Absolutely. And the market valuations of Indian companies have risen to global companies' valuations. One of the top companies in India, automobile companies, the market value is now equal to that of companies like General Motors in USA. So clearly, I think investors have taken fancy to auto stocks, in spite of the fact that there's been recently been some slowdown in auto sales. But I think the long-term prospects appear to be very, very promising.
आप पुनीत बता रहे हैं कि मार्केट बहुत रेजिलिएंट है, साथ में जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ी हुई वैल्यूएशन लग रहा है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं, डीआईआईज जो हैं, इनकी वजह से मार्केट में स्थिरता बनी हुई है, बावजूद इसके कि एफआईआईज ने पैसे हाल के दिनों में निकाले हैं। जापान की भी हमने कहानी सुनी कि वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद क्या हुआ, हमने पिछले हफ्ते 10 दिन पहले देखा। इस वक्त मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि ये जो मार्केट का वैल्यूएशन है ये बिल्कुल स्टेबलाइज कर गया है और यहां से नीचे बिल्कुल इसे नहीं आना चाहिए, कोई बहुत डीप करेक्शन नहीं लेना चाहिए, पूरी तरीके से एक आम निवेशक मार्केट पे अभी भरोसा कर सकता है? थोड़ा बहुत तो चलता रहता है जो ऊंच नीच होती है।
देखिए हर्ष, मुझे लगता है कि मार्केट को इस प्रकार से प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट में कभी बड़ी तेजी से बदलाव आते हैं। जैसे आपने कहा कि जापान में अभी रिसेंटली उन्होंने ऑल टाइम हाई, जो 30 वर्ष का जो हाई था उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर आई, और उसके बहुत भारी यहां पर गिरावट देखी हमने, करीब करीब 30% जापान की मार्केट में गिरावट आई थी। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट्स के अंदर एक यूफोरिया हो और वो बबल जो होता है कभी हम कहते हैं कि बर्स्ट हो जाता है और वो मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है। देखिए ऐसा रिस्क बाजार में रहता है और निवेशकों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब वो निवेश करें तो एक तो लंबे अरसे के लिए करें, दूसरा जो वैल्यूएशन है उसमें कोई भी ग्लोबल इवेंट हो या कोई डोमेस्टिक इवेंट होने से भारी गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर हम लंबे अरसे के लिए निवेश करते हैं तो मुझे लगता है कि इवन एट दीज करंट वैल्यूएशन, अगर आप चार साल या पांच साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब ये वैल्यूएशन शायद आपके लिए स्टेबल है। यदि उम्मीद है कि कोई मैं बहुत जल्दी कोई बहुत ज्यादा यहां से मुनाफा उठाऊंगा तो वो मुश्किल हो सकता है।
दैट वॉज अ रिपीट ऑफ ब्लैक फ्राइडे, व्हाट हैपेंड इन 87 हैज हैपेंड इन 2024, बट वी सॉ स्ट्रांग रीबाउंड, द रेजिलियंस दैट यू टॉकिंग अबाउट अर्लियर, एंड यूजुअली स्टॉक मार्केट, अ पैनिक इन द स्टॉक मार्केट इज ब्रॉट अबाउट बाय शॉर्ट सेलिंग। That's not worked in our market at all. I mean, if the FIIs are selling or if they're short selling, then DIIs are covering for it. So, the markets are resilient. Will they continue to be resilient? What is the short to medium term outlook? And how would you advise investors like Michael Ankaras?
So, Arjun, markets short term are always determined by liquidity and not fundamentals. How much money is coming into the markets? How much fresh money is flowing into the market? Last couple of years, we have seen a lot of fresh money come into the market. So we had this surge of retail investors entering the markets. Almost 15 crore investors are now there investing money either through mutual funds or retail investors. And I think that flow of fresh money really took our markets to new heights. Now, however, there is some stabilization in those numbers, first of all. Secondly, a very large number of companies are now coming with IPOs and raising very substantial amount of money from the stock markets. While it is good for the economy because new companies will get risk capital, but at the same time it creates huge supply of fresh equity now in the market. So if you really ask me, I think the best days for this bull market are now behind us. I don't think we are going to see this kind of returns going forward in next couple of years. Markets need to stabilize. They need to consolidate. We need to see that the allocation of capital by the markets is appropriate and is not efficient. And I think that will take some time. So if you ask me, I don't see a very sharp rise in the markets. I also do not see a very sharp fall. I think the markets will continue to trade in a narrow range for a few months.
So, Puneet, you spoke about retail investors, your Aam Aadmi. What is the level of savings to GDP right now? Is that a cause for concern? And obviously, we had raised the F&O, a boom in the market right now, where futures and options in the derivative market is something that retail investors are participating in much more.
So, first, I address this issue of savings in the economy. Because if you look at India's history, economic history, Indians were very big savers. We, at one point of time, we had the savings rate was household saving rate was almost 37%. One third of whatever we earned, we were saving either in the form of houses, financial savings, in deposits, bank deposits, etc. Now, post-pandemic, the latest data shows that that proportion of household savings has fallen to about 15%, which is really low. And the proportion of financial savings has fallen to about 5-6%. Of the income. So I think they are now looking at very, very low savings in household sector. A lot of money is going into consumption, or it is going into instruments like equities, F&O you mentioned, which are derivative instruments. So a lot of these innovative products have come, which promise higher returns. But and you see the impact. The impact is that banks are now struggling for deposits. The RBI governor has warned about it. The finance minister has warned about it, saying that the banks need to up their game to get more deposits, because without deposits, you can't lend. So clearly, I think there are challenges in the economy. It's not gung-ho when we come to things saying that okay, markets are going up and everybody's participating. It does cause imbalances in the entire financial system. It will be addressed. The regulators are really up to the job. RBI is doing a very fine job. SEBI is there. I think it all makes the financial market interesting.
कुल मिलाकर पुनीत हम कह सकते हैं कि भारत का जो economic scene है वो बहुत बढ़िया rosy picture प्रस्तुत कर रहा है, और कोयले के front पर भी एक अच्छी खबर है. राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में इस साल जून में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 3.48% की बड़ी गिरावट हुई है, और ये 142.13 अंक रहा. और कभी कभी गिरावट जो होती है ये अच्छी खबर होती है. ये क्यों हम बताते हैं? दरअसल पिछले साल जून में ये 147.25 पर था. ये उल्लेखनीय कमी बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए बाजार में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता का संकेत देता है. इस कमी से ये संकेत मिलता है कि जो कोयले की उपलब्धता है वो डिमांड के हिसाब से पर्याप्त है. पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जून 2024 में के दौरान देश के कोयला उत्पादन में 14.58% की प्रभावशाली वृद्धि भी रही है. यह वृद्धि देश की समग्र ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान का सूचक है. और जब कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है तो इसका मतलब सीधा आंकड़ा है कि आप बिजली उत्पादन भी सही ढंग से कर रहे हैं. और उन राज्यों में जहां बिजली का उत्पादन कम होता था वो अब पावर सफिशियंट स्टेट हो सकते हैं. कोयले की उपलब्धता से और क्या इकोनॉमी का रिलेशनशिप है आपकी नजर में?
तो देखिए, जो आपने नेशनल कोल इंडेक्स की बात करी, ये बेसिकली प्राइस इंडेक्स है. तो जब इसके अंदर गिरावट आती है तो ये इसका सूचक है कि प्राइसेस जो है कोयले की वो कम हो रहे हैं, दाम कम हो रहे हैं और उपलब्धता बढ़ रही है. और अगर कोयले के दाम कम हो रहे हैं, क्योंकि कोयला आज भी भारत के लिए मुख्य सोर्स है एनर्जी का, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्रियल यूज की बात करें, स्टील इंडस्ट्री की बात करें, तो कोयला एक बहुत बड़ा बल्कि डोमिनेंट कंपोनेंट है एनर्जी यूजेज का हमारा. तो यदि कोयले की कॉस्ट कम आती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और साथ में हम ये भी याद रखें कि कोयले की जो इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में इसका शुमार होता है, इसकी गिनती होती है. और मुझे लगता है कि कोयला इंडस्ट्री की ग्रोथ जैसे ये इंडेक्स दर्शा रहा है, दैट इज वेरी गुड न्यूज फॉर इंडियन इकोनॉमी.
What about core sector growth and the index of industrial production? You mentioned about factory output. How important is coal vis-a-vis both these indices?
It's very important, because see, when we talk about core sector, we're talking about the basic components which contribute to then industrial production. Industrial production, of course, comprises of manufacturing sector. It has many other components. But I think energy security, energy costs is at the core of this entire activity. And I think coal is central to India's need for energy. So clearly, it's a very integral part of our economic growth journey.
एशियाई बाजारों की बात करेंगे. एशियाई बाजारों में आज तेजी का रुख रहा है. जापान का निकेई सूचकांक 3.5% बढ़ा, जबकि दक्षिण कोरियाई बाजार के कॉस्पी में 1.95% की तेजी रही. हांगकांग के हैंगसेंग में भी 1.84% की और सिंगापुर के बाजार में 1.84% की तेजी रही है. सिंगापुर बाजार में 1.11% की तेजी रही. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स भी मामूली रूप से बढ़ा है. यूरोपीय बाजारों में भी आज तेजी रही है. जर्मनी का डैक्स 0.59% बढ़ा. फ्रांस के कैक 40 में 0.21% की तेजी रही, लेकिन लंदन के फुटसी 100 में 0.4% का नुकसान रहा. एशियाई बाजारों में देखें तो लगभग पूरा सारा एशियाई बाजार बढ़ा. यूरोपीय बाजार में बढ़त रही है. लंदन के बाजार में थोड़ी बहुत कमी रही है, जिसको हम कारोबारी सत्र मान सकते हैं, जो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहता है. तो भारत में भी तेजी रही है. तो क्या अब ये हम मान सकते हैं कि जो भारत की स्थिति है ये भी दुनिया के बाजारों को एक तरीके से प्रभावित कर रहा है?
देखिए, ये कहना तो खैर मुश्किल है कि भारत के बाजार से दुनिया के बड़े बाजार प्रभावित हो, लेकिन ये बात तो साफ है कि हम जो भारत है, भारत के बाजार है वो इंटीग्रेटेड है ग्लोबल मार्केट के साथ, और जो ट्रेंड ब्रॉड ट्रेंड हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में वो भी भारत में हमको देखने को मिलता है. और यदि हम एशियाई बाजारों की बात करें तो पिछले दिनों काफी वहां पर करेक्शन हुई थी, काफी गिरावट रही थी, उस दौरान भारत के बाजार काफी स्टेबल थे इन कंपैरिजन. तो मुझे लगता है कि हम लोग आउट परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को, ये जरूर एक पॉजिटिव फैक्टर है. अभी हमने देखा कि जो ग्लोबल इंडेक्सेस हैं इन्वेस्टर्स के, जैसे मॉर्गन स्टैनली कॉम्पोजिट इंडेक्स है, वहां पर भारत का वेटेज बढ़ा है और हम करीब करीब चाइना के बराबर वेटेज आ रहे. एक जमाना था जब हमारी वेटेज होती थी 5%, 7% और चाइना की वेटेज होती थी करीब करीब 45%. इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट इंडेक्सेस होते थे, आज वो करीब करीब बराबर है. चाइना करीब 25-26% पर है और हम 20% के आसपास हैं. तो क्लियरली भारतीय बाजारों की साख बढ़ी है, कंपनियों की साख बढ़ी है, और मुझे उम्मीद है कि ये एक स्टेबल और
जीडीपी के पैमाने पर तो भारत की साख बढ़ी ही हुई है. अगर पांचवी ऐसे अर्थव्यवस्था है, अगर हम नॉमिनल जीडीपी को देखते हैं और जीडीपी पीपीपी देखते हैं तो हम ऑलरेडी थर्ड पर है.
हाँ बिल्कुल. देखिए पीपीपी तो परचेसिंग पावर पैरिटी, अगर देखते हैं जो परचेसिंग पावर है इस इकोनॉमी की, उसको कंपेयर करते हैं तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है. और वैसे भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके इस जो करंट टेन्योर है इसके अंदर भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का जो पोजीशन है वो जरूर.
जर्मनी और जापान को बहुत जल्दी हम हमसे छोड़ने वाले
हैं. वेरी ब्रीफली, द एशियन मार्केट्स, जापान सॉ देयर इंडेक्स निकेई गो अप बाय 3.51%. वी हैड अ मेंशन अर्लियर ऑफ ब्लैक फ्राइडे आल्सो वेयर द मार्केट वेंट डाउन बाय ऑलमोस्ट 13% इन द एंटायर ट्रेडिंग सेशन फॉर दैट पर्टिकुलर डे. देयर करेंसी इज ऑल्सो एट 147.83 टू द यूएस डॉलर एंड द यूएस डॉलर इंडेक्स इज डाउन to 102.69 right now. We see a devaluation in the yen and an upsurge in the Nikkei, the US, the Japanese stock market. What is this telling about the economy?
So, Arjun, in fact, yen has been at the center of this global meltdown that we saw of stock markets and financial markets in the last couple of weeks. As we all know, there was this huge yen carry trade where traders were borrowing money in yen from Japanese markets and then investing elsewhere. And once yen appreciated, because from 160, it had gone down to 160 to the dollar, and from 160 to the dollar, it appreciated to 140 yen to the dollar. So in that surge, a lot of people had to sell the assets worldwide and then return the money to Japanese lenders. So all that is called the reversal of the yen carry trade. When that happened, the markets really went haywire and we saw very sharp falls in equity prices. Fortunately, that is stabilized. I think hopefully that is behind us now. We'll not see such volatile moves. Even then, I believe that yen is still underpriced. We might see some gradual appreciation in the yen going forward.
Well, let's have a look at the U.S. market now. U.S. indices closed higher yesterday with the Nasdaq surging over 2% as robust July U.S. retail sales data eased concerns of an approaching recession in the world's largest economy. Major U.S. markets were trading in the green. The Nasdaq composite advanced 2.34%, the S&P 500 added 1.61%, and the Dow Jones industrial average climbed 1.39%. Experts, economists are saying that the recessionary impact, even though technically they're not in a recession right now. This thing's impending, but it's spread. What is the employment data like in the U.S., which is leading to this kind of concern?
So the U.S., of course, had been reporting very robust labor employment data, and it appeared that the unemployment rate in the U.S. economy was at all-time low. And then we saw last 2-3 weeks, there was this apprehension that strong labor data will lead to the U.S. Fed holding to higher rates for much longer. And then last couple of weeks, we've seen that labor data softened a lot, and therefore the possibility that the U.S. Fed will cut interest rates has risen, and which has then given strength to the U.S. markets. So I think it's all linked. If you look at employment data, you look at the interest rates, you look at stock markets in U.S., they're all linked with one, thread right now. And employment, of course, is a centerpiece again, because if employment rate goes down, then the U.S. Fed will cut rates more aggressively. If it stays high, then, of course, we'll see a more gradual pace of decline.
Well, stocks like Tesla have gone up by 6.3% in one trading session in the U.S. right now. They are now coming out with robotics, even though X may not be doing that well. The boom in the U.S. stock market that we're seeing right now, who is in the buying into it? Are they the retail investors or institutional ones?
So like India, U.S. also saw a very huge surge in retail buying. But I think in U.S. you have a lot of hedge funds, a lot of mutual funds which borrow and which invest in stock markets. So all that is happening in U.S. markets, a much more developed financial market. So I think those are the investors.
और आप मार्केट एक्सपर्ट हैं, मार्केट के लिए तो अच्छी खबर है क्योंकि आने वाले दिनों में कम से कम 25 कंपनियां अपने आईपीओज लाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। इन आईपीओज के जरिए 22,000 करोड़ रुपए उगाहे जाने हैं। सेबी ने इन 25 कंपनियों को आईपीओ लाने के लिए अपनी सहमति दे दी है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पहले चार कंपनियों के आईपीओ से बहुत ही सफलतापूर्वक 11,850 करोड़ रुपए आए थे। इस बीच पीओ के जरिए हो रहा निवेश, एसआईपी के जरिए हो रहा निवेश जुलाई में अब तक का सर्वाधिक 23,331 करोड़ रुपए का रहा है। जून में यह आंकड़ा 21,262 करोड़ रुपए का था। अगस्त के पहले सप्ताह में इधर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी 674.9 अरब डॉलर का हो गया, यानी जिसकी हम बातचीत कर रहे थे रोजी पिक्चर की, वो बहुत ही बेहतरीन है हर फ्रंट पर, चाहे वो फॉरेक्स रिजर्व हो या आईपीओज आने वाले हों। एक त्वरित टिप्पणी, आपकी समय कम है, आईपीओज कैसा रहेगा आने वाले समय के लिए बाजार के लिए?
देखिए, हाल में ही कुछ बड़े आईपीओज आए थे, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी के आईपीओ, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो निवेशकों को उसमें पैसा बना है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पर है। तो मुझे लगता है जो आने वाला समय है उसमें अच्छी कंपनियों के आईपीओज हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, काफी उम्मीद है।
लेट्स हैव अ लुक एट द ऑयल मार्केट। ब्रेंट एंड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड trading more than 2% down in the global crude market today. Global oil benchmark Brent crude was down nearly 2.5% to $79.40 per barrel. The U.S. WTI trading nearly 3% down to $75.96 per barrel when reports last came in.
Sona chandi ki bhi baat kar lete hain. सोने की कीमतों में आज 730 रुपए की बढ़त रही है। प्रति 10 ग्राम सोना 71,000 रुपए में बिका। चांदी की कीमत भी 1,900 रुपए की बढ़त के साथ प्रति किलो 82,330 रुपए रही। रुपया आज डॉलर के मुकाबले सपाट रहा है, कोई खास बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई है। एक डॉलर की कीमत 83.94 रुपए रही है। और पुनीत, आप आए, आपने हमारे साथ बातचीत की, मार्केट पर अपनी राय दी। अब इंतजार करते हैं अगले सप्ताह का कि मार्केट जब खुलता है तो कैसा रहता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद राश।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। सेंसेक्स एंड निफ्टी सोर अबव 1.5% टुडे। सेंसेक्स क्लोजेस एट 80,437, निफ्टी फिनिशेस एट 24,541। आईपीओ सीजन वार्म्स अप, 25 कंपनीज वर्थ मोर देन 22,000 करोड़ रुपीज गियरिंग अप फॉर मार्केट एंट्री। एंड नेशनल कोल इंडेक्स प्रोविजनल डेटा रिवील्स sufficient coal availability to meet growing demands. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
Namaskar.
Christmas song.